लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की बुधवारीय धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह यीशु आशा की निशानी पर अपने धर्म शिक्षा माला को आगे बढ़ाते हुए चंगाई पर चिंतन किया।
Cari fratelli e sorelle, anche oggi meditiamo sulle guarigioni di Gesù come segno di speranza.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि आज भी हम यीशु की चंगाई पर चिंतन करेंगे, जो आशा की एक निशानी है। हम उनमें एक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जब हम व्यक्तिगत रूप में उनके संग एक संबंध में प्रवेश करते हैं। जीवन की थकान हमारे लिए एक विस्तृत बीमारी लगती है, जहां सच्चाई अपने में जटिल उबाव जान पड़ती है, जिसका सामना करने में हम कठिनाई का अनुभव करते हैं और इस भांति हम अपने में बंद हो जाते सो जाते हैं, इस भ्रम में कि जब हम जागेंगे तो चीजें अपने में भिन्न होंगी। लेकिन हमें सच्चाई का सामना करने की जरूरत है और यीशु के संग हम ऐसा उचित रूप में कर सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों की टीका टिप्पणी के कारण अपने में अटक जाते हैं, जो दूसरों पर ठप्पा लगाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इन सारी परिस्थितियों का उत्तर हम संत मार्कुस के सुसमाचार के उस पद में पाते हैं, जहां दो कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एक 12 साल की लड़की जो बीमारी के कारण मृत्यु शैया में पड़ी है और एक नारी जो अपने में 12 वर्षों से रक्त स्राव से पीड़ित है, जो चंगाई प्राप्त करने हेतु यीशु की खोज करती है। इन दो नारी प्रतिरूपों के मध्य सुसमाचार लेखक लड़की के पिता के व्यक्तित्व को रखते हैं। वह घर में रुककर अपनी बेटी के बीमारी पर शिकायत नहीं करता है, वह बाहर जाता और सहायता की मांग करता है। हालांकि वह ईश मंदिर का प्रधान नहीं है, वह अपने सामाजिक ओहदे के कारण चीजों की मांग नहीं करता है। जब उसे प्रतीक्षा करने की मांग की जाती तो वह अपने में धैर्य नहीं खोता है और वह इंतजार करता है। जब लोग उसे यह खबर देने आते कि उसकी बेटी मर चुकी है और स्वामी को तंग करने से कोई लाभ नहीं, तो भी वह विश्वास और आशा में बना रहता है। संत पापा लियो ने कहा,
Il colloquio di questo padre con Gesù è interrotto dalla donna emorroissa.
उस पिता का यीशु के संग वार्ता को रक्त स्राव से पीड़ित नारी बाधित करती है, जो किसी तरह यीशु के निकट आती और उनके लबादे का स्पर्श करती है। वह नारी बड़े साहस से एक निर्णय लेती जो उसके जीवन को बदल देता है। हर कोई उसे निरंतर यही कहता कि वह उनके निकट न आए, उनकी नजरों से दूर रहे। लोगों ने उसे अकेले में और गुप्त रूप से रहने की सजा दी थी। कभी कभी हम भी दूसरों के निर्णयों के शिकार हो सकते हैं, जो हमें एक ऐसी चादर से ढक देते जो हमारा नहीं है, और इस तरह हम अपने में प्रताड़ित होते रहते और उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। वह नारी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ती है जब उसमें यह विश्वास पनपता है कि यीशु उसे चंगाई प्रदान कर सकते हैं। अतः वह अपने में साहस जमा करते हुए बाहर निकलती और उनकी खोज हेतु जाती है। वह वहां पहुंचने की चाह करती और कम से कम यीशु के वस्त्रों को छूने की चाह रखती है। यीशु के चारों ओर एक बड़ी भीड़ है और बहुत से लोग उनका स्पर्श कर रहे होते हैं, यद्यपि उनमें से किसी को कुछ नहीं होता है, जबकि उस नारी का यीशु को स्पर्श करना उसमें चंगाई लाती है। संत पापा ने कहा कि हम अंतर कहाँ पाते हैं। संत अगुस्टिन इस पद के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहते हैं,
A nome di Gesù, la folla mi si accalca intorno, ma la fede mi tocca.
यीशु के नाम में भीड़ धक्का मुक्की करती है, विश्वास स्पर्श करता है। इस भांति हर समय विश्वास में यीशु को घोषित किया गया कार्य, उसके संग स्थापित हमारा संबंध हमारे लिए तुरंत उनकी कृपा लेकर आती है। कई बार हम इसके प्रति सचेत नहीं रहते हैं, लेकिन गुप्त और सच्चे रूप में उनकी कृपा हम में पहुंचती और धीरे धीरे जीवन में हमें अंदर से परिवर्तित करती है। संत पापा लियो ने कहा कि शायद आज भी बहुत से लोग यीशु के पास छिछले रूप में आते हैं, उनकी शक्ति में सचमुच विश्वास किए बिना। हम गिरजाघरों की चाहर दीवारी में चलते हैं, लेकिन शायद हमारे हृदय कहीं और होते हैं। वह नारी चुपचाप और गुप्त रूप से अपने भय पर विजय प्राप्त करते हुए अपने हाथों से यीशु के हृदय का स्पर्श करती है। वह अपनी बीमारी के कारण अशुद्ध समझी जाती थी, वह तुरंत अपने में चंगाई का अनुभव करती है। यीशु उसे कहते हैं, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति में जाओ। उसी वक्त पिता को यह खबर सुनाई पड़ती है कि उसकी पुत्री मर चुकी है। यीशु उससे कहते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। तब वे उसके घर जाते और सबों को रोते और विलाप करते हुए देखकर कहते हैं, लड़की मरी नहीं है, लेकिन सो रही है। वे उसके कमरे में प्रवेश करते हैं जहां वह पड़ी थी। वे उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं, तालिथा कुम, छोटी लड़की, उठो। वह लड़की उठ खड़ी होती और चलने फिरने लगती है। संत पापा ने कहा कि यीशु हमें दिखलाते हैं कि वे हर बीमारी से केवल चंगाई नहीं करते, बल्कि मुर्दों को भी जिलाते हैं। ईश्वर के लिए जो अनंत जीवन है, शरीर की मृत्यु सोने के समान है। असल मृत्यु आत्मा का मरना है, जिसे हमें भयभीत होने की जरूरत है। चंगाई के अंतिम तथ्य का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि यीशु जीवन देने के बाद उस लड़की के माता पिता को खाने के लिए कुछ देने की बात कहते हैं। यह ठोस रूप में यीशु का हमारी मानवता के अति निकट रहने की बात घोषित करता है। हम इसे और भी एक गहरे अर्थ में समझ सकते हैं। जब हमारी संतान संकट की स्थिति में रहते हैं और उन्हें आध्यात्मिक पोषण की जरूरत होती है, क्या हम उन्हें वे चीजें देना जानते हैं? यदि हम स्वयं सुसमाचार से पोषित नहीं हैं, तो हम उन्हें यह कैसे दे सकते हैं?
Cari fratelli e sorelle, nella vita ci sono momenti di delusione e di scoraggiamento, e c'è anche l'esperienza della morte.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि जीवन में हताशी और निराशा के क्षण हैं और साथ ही मृत्यु का अनुभव भी। आइए हम उस नारी और पिता से सीखें। हम यीशु के पास आएं, वे हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं, वे हमें पुनर्जीवित कर सकते हैं। यीशु हमारी आशा हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। धर्माध्यक्षों की जुबली के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के संत पेत्रुस के सिंहासन की बलि वेदी के सामने उपस्थित करीब 300 धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मैं रोम की तीर्थ यात्रा पर आने के लिए आप सभी के प्रयासों की गहराई से सराहना करता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि आपके मंत्रालय की मांगे कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी आप में से प्रत्येक मेरी तरह चरवाहा होने के पहले एक भेड़ है, प्रभु के झुंड का सदस्य है, इसलिए हमें भी दूसरों से पहले पवित्र द्वार से गुजरने के लिए कहा जाता है, जो मसीह उद्धारकर्ता का प्रतीक है। अगर हमें अपनी देखभाल के लिए सौंपी गई कलीसियाओं का नेतृत्व करना है तो हमें खुद को यीशु भले चरवाहे द्वारा गहराई से नवीनीकृत होने देना चाहिए, ताकि हम खुद को पूरी तरह से उसके दिल और उसके प्यार के रहस्य के अनुरूप बना सकें। संत पापा ने कहा कि आशा कभी निराश नहीं करती। हमने कितनी बार संत पापा फ्रांसिस को संत पौलुस के इन शब्दों को दोहराते हुए सुना। वे उनके ट्रेडमार्क वाक्यांशों में से एक बन गए, इतना कि उन्होंने इसे इस जयंती वर्ष की उद्घोषणा के शुरुआती शब्दों के रूप में चुना। हम धर्माध्यक्ष के रूप में उस भविष्य सूचक विरासत के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए तथा अपने शब्दों और अपने जीवन जीने के तरीके के माध्यम से ईश्वर के लोगों तक पहुँचना चाहिए। आशा निराश नहीं करती, इसका मतलब है कि धारा के विपरीत तैरना, यहाँ तक कि कुछ दर्दनाक परिस्थितियों में भी जो निराशाजनक लगती है, फिर भी यह ठीक वही समय है जब यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा विश्वास और हमारी आशा हमसे नहीं बल्कि ईश्वर से आती है। अगर हम वास्तव में उन लोगों के करीब हैं जो पीड़ित हैं, तो पवित्र आत्मा उनके दिलों में एक ऐसी लौ को भी पुनर्जीवित कर सकती है जो लगभग बुझ चुकी है। संत पापा ने कहा कि एक धर्माध्यक्ष ईश्वर पर दृढ़ता पूर्वक आधारित जीवन और कलीसिया की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित जीवन के उदाहरण के द्वारा आशा का साक्षी होता है। आइए हम एक पल के लिए रुकें और साथ मिलकर इस गवाही के कुछ पहलुओं पर विचार करें। सबसे पहले, धर्माध्यक्ष उस विशेष कलीसिया में एकता का दृश्यमान सिद्धांत है जिसे उसे सौंपा गया है। यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों के बीच और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अपने स्वयं के विकास और सुसमाचार के प्रचार के लिए दिए गए उपहारों और मंत्रालयों की विविधता को बढ़ावा देकर संवाद स्थापित करे। दूसरा पहलू, धर्माध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक जीवन जीता है। एक शब्द में, वह पवित्र आत्मा के संकेतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति है, जो उसे विश्वास, आशा और उदारता से भर देता है और दैनिक जीवन में विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों के बीच उन्हें प्रज्वलित करता है। संत पापा ने धर्माध्यक्षों को उन मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए कहा जो उनकी प्रेरिताई और दूसरों के साथ उसके संबंध में बहुत मददगार है। इनमें निष्पक्षता, ईमानदारी, उदारता, मन और हृदय का खुलापन, दूसरों की खुशियों में खुश होने और पीड़ित लोगों के साथ दुख सहने की क्षमता, साथ ही आत्मनियंत्रण, विनम्रता, धैर्य, विवेक, सुनने और बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत खुलापन और सेवा करने की इच्छा शामिल है। पवित्र आत्मा की कृपा से प्रभु येसु के अनुरूप विकसित किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। और बुधवार को अपने आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा लियो 14वें ने 12 जून को सीरिया के दमिश्क में मार एलियास गिरजाघर पर हुए घृणित आतंकवादी हमले को याद किया। उन्होंने पीड़ितों को ईश्वर की दया पर छोड़ दिया और घायलों एवं उनके परिवारों के लिए निरंतर प्रार्थना की। मध्य पूर्व के सभी ख्रिस्तियों की ओर मुड़ते हुए संत पापा ने उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं आपके करीब हूँ और पूरी कलीसिया आपके साथ खड़ी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह हालिया हमला गहरी नाजुकता को उजागर करता है, जिससे सीरिया वर्षों से अस्थिरता और हिंसा के बाद भी जूझ रही है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस देश से अपनी नजरें न हटाने का आह्वान किया। इसके बजाय उन्होंने आगे कहा, इसे एकजुटता के कार्यों और शांति एवं सुलह के लिए नई प्रतिबद्धता के माध्यम से समर्थन देना चाहिए। संत पापा ने यह भी साझा किया कि वे ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति पर बारीकी से और उम्मीद से नजर बनाए हुए हैं। अपनी टिप्पणी समाप्त करने से पहले उन्होंने प्रभुत्व और बदला लेने के विकल्प को अस्वीकार करने पर जोर दिया। इसके बजाय उन्होंने सभी को संवाद, कूटनीति और शांति का मार्ग दृढ़ संकल्प के साथ चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रीष्म अवकाश के कारण बुधवार 2, 9, 16 और 23 जुलाई को होने वाले आम दर्शन समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। ये बुधवार 30 जुलाई को पुनः शुरू होगी। और संत योहान बपतिस्ता के पर्व के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने ईश्वर के प्रेम की ठोस गवाही के लिए सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और प्रार्थना एवं उचित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कलीसिया आपको उन सभी अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद देती है जिन्हें आप प्यार के जरूरतमंद लोगों के लिए देते हैं, अक्सर बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी। कलीसिया आपको नवीनीकरण के उस मार्ग के लिए भी धन्यवाद देती है जिसे आप पिछले कुछ सालों से अपना रहे हैं, जिसका उद्देश्य सुसमाचार के प्रति अधिक निष्ठा है। संत पापा ने माल्टा के सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर के सदस्यों के संरक्षक संत योहान बपतिस्ता के पर्व के अवसर पर संबोधित एक संदेश में कहा। साथ ही उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इस दिशा में आगे बढ़ते रहें। उधर द चोसन टीवी सीरीज के सदस्य नवीनतम सीजन के महत्व और दर्शकों को यीशु से जोड़ने में उनकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए रोम की यात्रा पर हैं। सोमवार 23 जून को द चोसन टीवी सीरीज के कलाकारों और क्रू ने इटली के मतेरा में फिल्मांकन के ब्रेक के दौरान रोम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।
कदम दर कदम पोप लियो 14वें दुनिया को अपना परिचय देते हैं।
आप सबको शांति मिले
और उसी क्षण से उनके कदम हमारे भी बन गए हैं।
मैं आपके पास एक भाई के रूप में आया हूं, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है।
संत पेत्रुस की दान राशि में अपने योगदान के साथ संत पिता के कदमों का ठोस रूप से समर्थन करें। आप उन्हें दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करेंगे और जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता में हाथ बटाएंगे।
भाइयों बहनों, यह प्रेम का समय है।
पोप लियो 14वें के कदमों का समर्थन करें। संत पेत्रुस के अनुदान राशि में योगदान दें। santpietro.va के साइट www.obolo पर जरूर जाएं।